नूर के जाने के बाद सिर्फ इकबाल और सुल्ताना रह गए थे। इकबाल ने थोड़ी देर खामोश रहने के बाद पूछा, खलील हमारे बाद घर आया था?
हाँ आया था, सुल्ताना बेगम ने जवाब दिया। अभी तक तो सब ठीक है, लेकिन अब सोचना पड़ेगा कि उसका क्या करना है। पहले उन्हें पूरा यकीन नहीं था, लेकिन अब साफ हो चुका था कि खलील उन्हीं पर नज़र रखने के लिए यहाँ आया है। इकबाल की आंखों में सख्ती उतर आई। देखता हूँ क्या करना है, उसने ठंडे लहजे में कहा। उधर रेहान को खबर मिल चुकी थी कि नूर और इकबाल वापस आ गए हैं।
क्या? उसने फ़ोन पर तेज़ आवाज़ में कहा। वापस आ गए?
जी साहब, खलील ने जवाब दिया। नूर बीबी के गुर्दे में पथरी थी, उसी के इलाज के लिए गए थे, अब ठीक होकर लौट आए हैं। रेहान कुछ पल चुप रहा, फिर शक भरे लहजे में बोला, तो पागल तो नहीं हो गया, सही खबर दे रहा है ना?
बिल्कुल सही खबर है साहब, खलील ने तुरंत कहा। रेहान की आवाज़ अब सख्त हो गई। मेरी बात ध्यान से सुन, उनके घर कोई भी आए, किसी को भी अंदर मत जाने देना। वो थोड़ा रुका, फिर और भी ठंडे अंदाज में बोला, जो भी आए उसकी हड्डियां तोड़ देना, समझा?
जी साहब, खलील ने घबराते हुए कहा। रेहान ने बिना कुछ और बोले फ़ोन काट दिया। उसी वक्त उसके ऑफिस का दरवाज़ा खुला। आओ, रेहान ने कहा। एक आदमी अंदर आया, उसके चेहरे पर झिझक साफ दिख रही थी। रेहान ने उसे गौर से देखते हुए पूछा, तुम इकबाल के वकील हो?
जी, उसने धीमे से जवाब दिया। रेहान कुर्सी पर आगे झुक गया। मेरे लिए काम करोगे? वकील थोड़ा घबराया।
कैसा काम?
रेहान हल्का सा मुस्कुराया। सिद्धपुर वाला प्रॉपर्टी केस, जो तुम इकबाल के लिए लड़ रहे हो। वो रुका, फिर साफ शब्दों में बोला, वो केस हार जाओ। वकील के चेहरे का रंग उड़ गया। तभी रेहान ने दराज खोली और पैसों की मोटी गड्डी निकालकर उसके सामने रख दी। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। अगली तारीख कब है? रेहान ने पूछा। अगले महीने, वकील ने हकलाते हुए कहा। ठीक है, रेहान ने कहा, सोच लो किस तरफ खड़े होना है। वकील ने धीरे से पैसे उठाए और बिना कुछ बोले वहां से चला गया। सिर्फ एक महीने की बात है, रेहान ने खुद से धीमे स्वर में कहा। उसकी आंखों में एक अजीब सा भरोसा और चालाकी झलक रही थी। एक महीने बाद वो लोग ये घर का केस हार जाएंगे। वो कुर्सी पर पीछे टिक गया, होंठों पर हल्की सी मुस्कान आ गई, जैसे उसे अपनी चाल पर पूरा यकीन हो। उसे लगा था कि इस एक चाल से वो सबको अपने कदमों में झुका देगा, लेकिन असली खेज तो अभी बाकी था। अब देखना यह था वक्त किसका साथ देता है और किसकी चाल भारी पड़ती है। माहिरा के गेस्ट हाउस का मैनेजर उस दिन घर आया हुआ था। माहिरा अक्सर गेस्ट हाउस जाती थी, लेकिन उसने कभी इतनी गहराई से उसकी बुकिंग्स पर ध्यान नहीं दिया था। आज मैनेजर किसी जरूरी काम से आया था। मैम, ये बुकिंग्स की लिस्ट है, उसने फाइल आगे बढ़ाते हुए कहा। माहिरा ने लिस्ट पर नजर डाली और हल्का सा चौंक गई। ये क्या है, पूरा गेस्ट हाउस? उसने हैरानी से पूछा। जी मैम, मैनेजर ने सिर हिलाया। ऐसा कई बार हुआ है, ये तीन लोग मिलकर पूरा का पूरा गेस्ट हाउस बुक कर लेते हैं। उसकी भौहें हल्की सी सिकुड़ गईं। तीन लोग और पूरा गेस्ट हाउस? उसने धीमे से कहा। माहिरा ने सहज बनने की कोशिश की। कोई फॉरेनर होंगे क्या?
नहीं मैम, मैनेजर ने जवाब दिया, यहीं के हैं।
अरमान अब पूरी तरह सतर्क हो चुका था। फिर बार बार पूरा गेस्ट हाउस बुक करना कुछ तो अजीब है, उसने सोचा। माहिरा ने बात हल्की करने की कोशिश की। हो सकता है उनके घर में कोई बड़ा प्रोग्राम या मीटिंग होती हो। वो अंदर से खुश भी थी, आखिर उसका पूरा गेस्ट हाउस एक साथ बुक हो जाता था, इससे बेहतर क्या हो सकता था। लेकिन अरमान के मन में शक और गहरा हो रहा था। उसी वक्त लॉन में रेहाना बेगम आई। तभी अरमान ने भी लिस्ट उसके हाथ से लेकर देखी। इससे पहले कि वो कुछ आगे कहता, तभी लॉन में रेहाना बेगम आई थी। अरमान की नज़र उन पर गई। आइए ताई अम्मी, अरमान ने कहा, तुम लोगों के बीच इतनी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी, मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी। रेहाना बेगम ने मुस्कुराते हुए माहिरा और अरमान से कहा। कैसी बातें कर रही हैं भाभी? जुबैदा बेगम भी अंदर से निकलकर उसी वक्त लॉन में आ गई थी। कोई काम था तो मुझे बुला लेती, रेहाना बेगम ने हल्की सी झिझक के साथ कहा। सोचा तो मैंने भी यही था, मगर डर था कि कहीं तुम मना ना कर दो तो मुझे बुरा लग जाएगा। उनकी बात पर कुछ पल के लिए माहौल में अजीब सी खामोशी छा गई। असल में करीब एक महीना होने को आया था। पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद दोनों परिवारों के बीच दूरी साफ महसूस होने लगी थी। दिन गुजरते जा रहे थे। अरमान की सगाई को भी काफी वक्त हो चुका था, लेकिन पहले जैसा अपनापन अब कहीं खो गया था। दोनों परिवारों के बीच एक अनकहा फासला खड़ा हो चुका था। माहिरा भी अब अपने गेस्ट हाउस के काम में काफी बिजी रहने लगी थी। कुछ पल की खामोशी के बाद रेहाना बेगम ने बात शुरू की। रेहान और सादिया को आए हुए भी काफी वक्त हो गया है। मैं सोच रही थी कि रिदा को डिनर पर बुला लिया जाए, बस आपसे पूछने आई थी, कोई ऐतराज तो नहीं?
हमें क्या ऐतराज होगा, अरमान ने सीधा जवाब दिया।
रेहाना बेगम के होंठों पर हर की मुस्कान आ गई, लेकिन तभी जुबैदा बेगम ने बात काट दी। इन सब फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है, रहने दीजिए। उनकी बात सुनते ही रेहाना बेगम का चेहरा हल्का सा उतर गया। उन्होंने एक नजर अरमान और माहिरा की तरफ डाली, जैसे उम्मीद कर रही हों कि दोनों अपनी माँ की बात के खिलाफ कुछ कहेंगे, मगर माहिरा ने नजरें झुका ली और अरमान ने वहां से उठ जाना ही बेहतर समझा। मेरा फोन लॉन में रह गया है, वो बहाना बनाकर बाहर चला गया। मैंने तो मना किया था, रेहाना बेगम ने धीमे से कहा, लेकिन फरीद साहब ने कहा कि बुला लेते हैं। कमरे में फिर एक भारी खामोशी छा गई। तभी जुबैदा बेगम ने साफ शब्दों में कहा, असल बात यह है, मैं नहीं चाहती कि निकाह से पहले रिदा को नूर अरमान के रिश्ते के बारे में पता चले। रेहाना बेगम चौंक गई, मगर उसे कौन बताएगा सादिया, कुछ न कुछ तो सामने आ ही जाता है, जुबैदा ने ठंडे लहजे में कहा। आप सादिया को अच्छी तरह जानती हैं। रेहाना बेगम की नजरें और गंभीर हो गईं। तो ये बात तुमने रेहान को बताई? जुबैदा बेगम ने एक गहरी सांस ली। मैं किसी की जिंदगी में दखल नहीं देना चाहती थी, लेकिन जिस तरह उसने अरमान को जहर देने की बात मुझे बताई थी, उसके बाद मैंने उससे दूर रहना ही बेहतर समझा। कमरे का माहौल एकदम भारी हो गया, इसीलिए उसकी वापसी से पहले मंगनी कर दी, रेहाना बेगम ने सीधा सवाल किया। आप जो समझना चाहें, जुबैदा बेगम ने बिना झिझक जवाब दिया। रिदा को डिनर पर मैं बुला लूंगी, आप लोग यहीं आ जाइए, जुबैदा बेगम ने बात खत्म करते हुए कहा। फिर उन्होंने माहिरा की तरफ देखा, जाकर कामवाली से कहो खाना लगाएं, तुम्हारी ताई आज यहीं खाना खाकर जाएंगी। माहिरा उठ गई, लेकिन रेहाना बेगम वहीं बैठी रहीं, खामोश और गहरी सोच में डूबी हुई। उन्हें साफ महसूस हो रहा था, इस घर में सिर्फ दूरियां ही नहीं बल्कि कुछ खतरनाक राज भी पल रहे हैं। रेहान के कहने पर वकील ने खेल शुरू कर दिया था। हर सुनवाई पर कोई ना कोई बहाना बनाकर वो तारीख पर तारीख लेता जा रहा था। महीने बीत गए, हर नई तारीख के साथ इकबाल का केस और कमजोर होता चला गया। अब हालत ये थी कि फाइनल फैसला भी करीब आ गया था और उनकी फाइल पहले जैसी मजबूत नहीं रही थी। इकबाल को समझ नहीं आ रहा था आखिर गलती कहाँ हो रही है। उधर खलील चुपचाप अपने किराए के घर में रह रहा था। उसने कोई खास हरकत नहीं की थी, जैसे वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा हो। नूर के घर भी सब कुछ बाहर से सामान्य ही लग रहा था, ना फैजान आया। असल में नूर ने फैजान का नंबर ब्लॉक कर दिया था और अब उनके बीच कोई सीधा संपर्क नहीं बचा था। वैसे भी उसकी ट्रेनिंग पूरी होने वाली थी तो वो अपनी लाइफ में बिजी था, लेकिन
ये सन्नाटा जितना शांत दिख रहा था अंदर ही अंदर उतना ही खतरनाक था। एक तरफ केस हाथ से फिसल रहा था और दूसरी तरफ दुश्मन खामोशी से चालें चल रहा था।